ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। पालपा और भक्तपुर में हुए अलग अलग सड़क हादसों में 9 लोगों की हुई मौत। प्रतिनिधि सभा में कारागार विधेयक 2076 सर्वसम्मति से हुआ पारित। और रूस ने यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर किया मिसाइल हमला। हमले का रूस यूक्रेन अनाज समझौते पर पड़ सकता है काफी नकारात्मक असर। अब बाकी समाचार। गुलमी से बुटवल की ओर जा रही बस पालपा की रिवदीकोट गांव पालिका वार्ड नंबर 2 में दुर्घटनाग्रस्त होने से 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई। ये जानकारी वार्ड नंबर 2 के वार्ड अध्यक्ष ओम प्रसाद पोखरेल ने दी। मरने वालों में 3 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल है। मृतकों की शनाख्त होना अभी बाकी है। जिला प्रहरी कार्यालय पालपा से मिली जानकारी के मुताबिक हादसे में घायल हुए अन्य 16 लोगों का इलाज तानसेन में चल रहा है। बता दें कि बस सड़क से करीब 50 मीटर नीचे खाई में जा गिरी थी। मृतकों और घायलों का विस्तृत विवरण आना भी बाकी है। भक्तपुर नगर पालिका वार्ड नंबर 1 के सल्लाघारी के चुंगा गणेश के जंगल में साल का पेड़ गिरने से बस और स्कूटर दब गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और अन्य 12 लोग घायल हो गए। मरने वालों में भक्तपुर नगर पालिका वार्ड नंबर 2 के 25 वर्ष के विशेष खबुर्जा, चांगू नारायण नगर पालिका वार्ड नंबर 2 के 55 वर्षीय निहुंछे राम बख्त और सरलाही की हरिवन नगर पालिका वार्ड नंबर 4 के 45 वर्षीय राजकुमार भुजेल शामिल है। हादसे में घायल हुए 15 लोगों में से गंभीर घायल 3 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। उनमें से अन्य 7 लोगों का इलाज भक्तपुर इंटरनेशनल अस्पताल और 5 लोगों का डॉक्टर इवामुरा अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक व्यक्ति की अवस्था अभी भी गंभीर है, ये जानकारी पुलिस ने दी। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक के विशेष समय में सांसदों ने भक्तपुर के सल्लाघारी में हुए हादसे पर सरकार का ध्यान आकर्षण कराया। सांसदों ने हादसे में मरने वालों के परिजनों को उचित राहत मुहैया कराने और घायलों के निशुल्क इलाज की व्यवस्था करने का सरकार से आग्रह किया। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक ने कारागार विधेयक 2076 को पारित किया है। आज की बैठक में शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के सभापति जयपुरी घरती ने योग माया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक संबंधी समिति का प्रतिवेदन 2079 पेश किया। इससे पूर्व आज की बैठक के शुरू में सांसदों ने समसामयिक विषय पर सरकार का ध्यानाकर्षण कराया था। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक श्रावण 10 गते मंगलवार दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान कार्ययोजना 2079 को सार्वजनिक किया है। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आज एक कार्यक्रम का आयोजन कर पर्यटन पुनरुत्थान कार्ययोजना सार्वजनिक की। निर्वाचन आयोग ने आगामी निर्वाचन के लिए मतदान स्थल और मतदान केंद्र का पुनरावलोकन करना शुरू किया है। मतदान स्थल तथा मतदान केंद्र निर्धारण समन्वय समिति की आज की बैठक ने आवश्यक पूर्वाधार सहित के मतदान स्थल तथा मतदान केंद्र निर्धारण कर पुनरावलोकन करते हुए सिफारिश कर भेजने के संबंध में आवश्यक सहयोग सहजीकरण और समन्वय के लिए संबंधित निकाय को पत्राचार करने का निर्णय किया। ये जानकारी आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल ने दी। आज देश भर में कोरोना के 347 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 95 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए हैं। वहीं 2 संक्रमितों की मौत हो गई। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी। बता दें कि आज 78,228 लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415 हैश डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। कोविड 19 पर रोकथाम और नियंत्रण के उद्देश्य के साथ भारत से जुड़े नाको पर होल्डिंग सेंटर्स बनने के बावजूद उन्हें संचालित नहीं किया जा सका है। बता दें कि झापा के काकरभिट्टा, मोरंग के रानी, परसा के वीरगंज, रूपंदेही के बेलहिया, कपिलवस्तु के कृष्णनगर, बांके के जमनाहा, कैलाली के गौरी फंटा और कंचनपुर के गड्डा चौकी नाको पर होल्डिंग सेंटरों का निर्माण हो चुका है। इन होल्डिंग सेंटरों का निर्माण नेपाली सेना ने 27 करोड़ 67 लाख की लागत में किया है, लेकिन इनका संचालन किसके द्वारा हो ये स्पष्ट न होने के कारण इन्हें संचालित नहीं किया जा सका है। दक्षिणी झापा की कंचन कवल गांव पालिका में 3 किशोरियों को एक ही पेड़ पर फंदे से झूलती हुई अवस्था में मृत पाया गया है। कंचन कवल गांव पालिका वार्ड नंबर 5 स्थित पाठा मारी के बेल्ले गांव में सुनकोसी चाय बागान में बेर के पेड़ पर फंदे से लटके हुए हालात में स्थानीय पंचम गणेश की 16 वर्षीय बेटी करीना, पुगलू गणेश की 17 वर्षीय बेटी अंजलि और बीरबल गणेश की 16 वर्षीय बेटी कल्पना को मृत अवस्था में पाया गया। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय झापा ने दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक तीनों ही किशोरियां कल शनिवार दोपहर से घर से लापता थी। उन्होंने बताया कि तीनों ही किशोरी चाय बगान में मजदूरी करती थी। वन तथा वातावरण मंत्री प्रदीप यादव ने कहा कि वन मंत्रालय विकास में बाधक नहीं बनेगा। भरतपुर महानगरपालिका द्वारा आज चितवन में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री यादव ने कहा कि रुकी हुई विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। मौके पर महानगर प्रमुख रेणु दहाल ने बताया कि नारायणी के तटबंधन का काम, लैंडफिल साइट, ऑटोलैंड निर्माण क्षेत्र, विद्युतीकरण के काम, गोलाघाट और नवलपरासी को जोड़ने वाले पुल निर्माण लगाए क्षेत्र में पेड़ों की कटाई में उलझन है। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल ने कहा कि दो बड़े पड़ोसी देशों के बीच में स्थित नेपाल की सरकार और राजनीतिक दलों को संतुलन बनाकर काम करना होगा। आज काठमांडू में एक कार्यक्रम के दौरान इस बात का जिक्र करते हुए कि विश्व की परिस्थिति आज भी काफी जटिल है, अध्यक्ष नेपाल ने कहा कि पड़ोसी देशों के झगड़े में नेपाल को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस ने कहा है कि उसने यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर मिसाइल हमले कर एक यूक्रेनी युद्धपोत और अमेरिका से सप्लाई किए गए हथियारों को नष्ट कर दिया है। ओडेसा पर रूस के इस मिसाइल हमले का रूस यूक्रेन अनाज समझौते पर काफी नकारात्मक असर पड़ सकता है। पिछले शनिवार को ही रूस और यूक्रेन में समझौता हुआ था। समझौते में कहा गया था रूस यूक्रेन के उन बंदरगाहों पर हमले नहीं करेगा जहां से काले सागर के रास्ते अनाज की सप्लाई की जाएगी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा रूसी सेना ने ओडेसा पोर्ट पर खड़े यूक्रेन के एक युद्धपोत पर हमला किया जिसमें ये पूरी तरह ध्वस्त हो गया। इसके साथ ही वहां यूक्रेन की ओर से लाई गई अमेरिकी हथियारों की खेप भी नष्ट हो गई। इससे पहले रूसी विदेश मंत्री की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि रूसी कालिब्रा मिसाइलों ने हमले में यूक्रेन की गश्ती नाव को ध्वस्त कर दिया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पालपा और भक्तपुर में हुए अलग अलग सड़क हादसों में 9 लोगों की हुई मौत। प्रतिनिधि सभा में कारागार विधेयक 2076 सर्वसम्मति से हुआ पारित। और रूस ने यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर किया मिसाइल हमला। हमले का रूस यूक्रेन अनाज समझौते पर पड़ सकता है काफी नकारात्मक असर। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। शिवरात्रि।